ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. پھر در گزر کیا ہم نے تم سے اس کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. اب اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہ کہ انہوں نے شرک کیا تھا, شرک بہت بڑا گناہ, یعنی سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اسی لیے ہمیں ضرور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شرک کیا ہوتا ہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہوتی نا. اسی لیے ہم کبھی بابوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں, کبھی وہ میرا کام کرا دے گا, کبھی کس کو سجدے شروع کر دیتے ہیں, کبھی دعائیں کسی سے مانگنے شروع کر دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے. ہمیں تو بس ایک کلمہ رٹ لیا اور بس سوچ لیا کہ ہم تو پکے سچے مومن ہو گئے. یہ بھی اس وقت کے مسلمان ہیں, یہ کوئی کافر نہیں تھے, کہ کوئی کافر قوم کی نہیں بات ہو رہی, اس وقت اس زمانے کے مسلمان بنی اسرائیل ہیں. تو اب تمہیں اللہ نے پھر بھی معاف کر دی, من بعد ذالک, اس کے بعد بھی. کس کے بعد بھی؟ اس کے بعد بھی کہ تم نے شرک جیسا گناہ کیا, اس کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اور کیسے معافی ہوئی تھی ان کی, یہ بات اگلی آیت میں, آیت 54 میں آ رہی ہے. لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون, شاید کہ تم شکر ادا کر لو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ معافی مل جانا بھی itself ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, اس کے اوپر بھی شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو. اور کسی کو اگر توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ بھی ایک نعمت ہے جس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے تُو نے توبہ کی توفیق دے دی. اور اتنا بڑے جرم کے بعد بھی, جس کو آپ پتا ہے نا کہ کوئی اگر شرک کرتا ہوا مر جائے تو اس کے لیے کوئی توبہ نہیں, اس کا یہ گناہ کبھی نہیں معاف ہوگا. اور شکر کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے دل میں سمجھے کہ کسی نے مجھے یہ نعمت دی ہے, اس میں اس کے دل کے اندر یہ جذبات ہوں, زبان سے بھی بولے کہ جو نعمت دینے والا ہے اس کے گن گائے, اور اپنے اعضاء سے بھی اس کے آگے ہمیشہ جھکا رہے, اس کی تابے داری کرے, ٹھیک ہے, اس کی اطاعت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا کے کہ ہم نے معاف کر دیا, جبکہ کتنا بڑا گناہ تھا, ایک نعمت یاد کرائی, کہ احسان یاد کرایا ان کو کہ دیکھو تمہیں معافی مل گئی, بہت بڑی بات ہے. یعنی اللہ نے ایک ون مور چانس تمہیں دیا, حالانکہ یہ اتنی بڑی بات تھی پھر بھی اللہ نے چانس دیا, سمجھ آئی؟ اور دوسری کیا بات سمجھ آئی؟ اچھا پچھلی آیت سے ہی ایک اور بات جو رہ گئی وہ یہ کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا اربعین لیلت کا, کیا دینے کے لیے؟ کتاب, ٹھیک ہے, وحی کا جو شریعت تھی. اور ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کو ایک طرح سے مینٹلی فزیکلی تیار کیا گیا کتاب دینے سے پہلے. تو جو ہمارے پاس کتاب ہے اس کو لینے کے لیے بھی تو کوئی تیاری چاہیے ہوتی ہے, اپنے اندر کو پاک کرنا, اس کے لیے بھی کچھ ایسا ٹائم ہمیں نکالنا چاہیے جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ون ٹو ون ہو, جس میں اللہ سے باتیں کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو دیکھیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ رہتے, ان لوگوں کے پاس بھی رہتے, ان کو دیکھتے بھی رہتے, ان کو سپروائز بھی کرتے رہتے, ان کو اکیلے چھوڑ کے نہ آتے اور نہ یہ پرابلم بھی نہ ہوتی, وہیں پہ ان کو مل جاتی تورات, وہیں پہ ان کو تختیاں دے دی جاتی. یہاں پہ بلانے کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مطلب یہ جو کتاب ہوتی ہے نا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. اس کے لیے اللہ نے تیار کیا پہلے موسیٰ علیہ السلام, 40 دن کا ٹائم ان کو ملتا ہے وہاں پہ, اور اس کے بعد ان کو کتاب ملتی ہے. تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ آج ہم قرآن کو پڑھنے سیکھنے آئے نا, اس کی بھی کوئی تیاری چاہیے, اس کے لیے بھی یکسوئی چاہیے, فوکس ہونا پڑے گا. وہاں پہ فوکس تھے, کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ, اکیلے ہیں دور پہ. اور طلب چاہیے, یہ شوق چاہیے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو اپنے بھائی ہارون کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں, تو ان سے کہہ کے جاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کے لیے, اور جلدی جلدی جاتے ہیں. उनको जल्दी किस चीज के लिए थी? अल्लाह से मुलाकात की, और ये कि मुझे ये वही मिले कि ये तख्तियां मिले, तो ये उसी को मिलता है ना जिसके अंदर शौक हो, जिसके अंदर तलब हो, जो अपने आप को तैयार करे इसके लिए, अपने दिल को भी, अपने अपने आप को रूहानी तौर पे भी, अपने किरदार को भी, अपने अखलाक को भी, अपने जिस्मानी तौर पे भी। अल्लाह ने ऐसे ही तो नहीं रोजे रखवाए ना, तो अंदर बाहर पाक कराया, और फोकस हो, और एलोकेट किया उन्होंने एक टाइम, जिस जो 40 दिन का टाइम था इस वही को लेने के लिए। हम सोचते हैं हम ना टाइम दें, ना हम यकसुई इख्तियार करें, और फिर हम कहते हैं हमें आता ही नहीं है, हमें याद ही नहीं होता। याद कैसे होगा जब आप ना वक्त निकालेंगे, ना उसकी दोहराई करेंगे, ना उसके साथ टाइम स्पेंड ऐसे करेंगे कि आपने उसको सीरियसली लिया हुआ, बस खुद ही याद हो जाए। बात ये सिर्फ कह देना हमें नहीं याद होता, ये कोई सलूशन नहीं है। ये बताइए आपने कितनी दफा पढ़ा दिन में? 5 दफा कम से कम पढ़ा था, हर नमाज के बाद दोहराया था, आप फोकस्ड होके पढ़ रहे थे, क्योंकि ये वही ऐसे, ये वही का इल्म है, ये बड़ा कीमती है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया पैगंबरों को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आती थी तो उनकी कैफियत क्या होती थी? तो ये बड़ा कीमती है, इसकी कीमत को जानने, ये आम किताबों की तरह नहीं है, रिसालों की तरह नहीं है कि आप कहीं भी बैठे हुए, चलो जी साथ टीवी भी लगा हुआ है, साथ और भी चीजें चल रही हैं, आप साथ हम पढ़ भी रहे हैं भाई। इसके लिए बहुत फोकस होना चाहिए, और अल्लाह से दुआएं भी करनी चाहिए। अच्छा, तो इस हमें आज एक और चीज पता चली कि क्या चीज एक और है जिसके ऊपर हमें शुक्र अदा करना चाहिए जब हमें तौबा की तौफीक मिल जाए, क्योंकि हर एक को तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं तो मैंने क्या बुरा किया, मैं कौन सी ऐसी गुनाहगार, किस बात पे तौबा करूं आप, मतलब हाँ, मगर उनको कहेंगे कि आप तौबा करें, कहेंगे क्या हम बहुत बुरे हैं जो आप हमें तौबा का कह रहे हैं। तो ये ढिठाई जो होती है ना कि मैंने क्या किया, ये इसका मतलब तौबा की तौफीक ही छीनी हुई है। तो इसलिए ये भी एक अल्लाह का शुक्र अदा करें जब अपनी गलतियां नजर आए और तौबा की तौफीक मिल जाए, ये शुक्र के काबिल चीज है। अक्सर तो गलती नजर ही नहीं आती ना। और हमें ये भी पता चला कि देखें उन्होंने शरीयत कब मांगी, और मूसा अलैहि सलाम ये कब शरीयत लेने के लिए उनके लिए गए, वहां पे क्यों नहीं चले गए जब फिरौन के अंडर रह रहे थे। ये सारी मैं आपको ना अमल की बातें बता रही, ये नहीं आपको तफसीर में मिलेंगी, इसलिए इन पॉइंट्स को आपने लिखना है। बाकी जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लेंगे एक दफा इंशाल्लाह याद हो जाएगी, और ये आपको किसी तफसीर की किताब में से भी मिल सकती है। लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रही इनको नोट करें, कब वो गए थे ये शरीयत लेने के लिए, जब आजाद हो गए। तो जिस वक्त किसी जगह पर कोई कौम आजाद होती है तभी वो शरीयत अप्लाई कर सकती है, अल्लाह के कानून को अप्लाई कर सकती है। जब वो किसी जगह पर एज माइनॉरिटी रह रही हो, पिसी भी रह रही, तो वहां पे थोड़ी वो शरीयत नाफिज कर देगी। तो पहले जब कोई अथॉरिटी आती है जहां हकूमत वो पा लेते हैं, वहां शरीयत का निफाज होता है। ये इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी मुल्क के अंदर थोड़े से रह रहे हैं हम यहाँ पे शरीयत नाफिज करेंगे। शरीयत किस पे नाफिज करोगे? शरीयत वही होती है जब आजाद होते हैं, जब हकूमतें मिलती हैं। अच्छा, आप इन्होंने बछड़ा ही क्यों बनाया था? कहा जाता है, बास जगह पे आता है कि फिरौन की कौम में भी बछड़े की पूजा की जाती थी, या इन्होंने रास्ते में कहीं बछड़ा देख लिया था, लोग उसकी पूजा कर रहे थे, क्या इस वजह से इन्होंने किया था, वल्ला वाला। मगर आप देखते हैं कि आज तक ये गाय या बछड़ा या इन्हीं चीजों को लोग बनाते हैं, और कई मजाहिब के अंदर इनको आपने देखा है खुदा का दर्जा दिया होता है, इनको खाते नहीं है, इनको जिबा नहीं करते कि नहीं ये तो पता नहीं, ये भी एक खुदा ही है। तो ये कदीम जमाने से चला आ रहा है गाय के साथ कोई मसला इंसानों का, ये आज से नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया वह इद आतैना मूसल किताब वल फुरकान, फिर जब हमने दी मूसा अलैहि सलाम को किताब और फुरकान, किस लिए दी थी? लिए दी होगी? आप क्या, आपका क्या ख्याल है? आगे पढ़ते जाएं, किताबें इसीलिए आती हैं, तो सवाब भी तो मिलेगा ना, सवाब लेना, तो पढ़ते जाएं, उसको खत्म करते जाएं, फिर से पढ़ना शुरू कर दें, फिर अपने बच्चों को भी उसके नाजरे पढ़ा लें, फिर उनके जो है ना आमीन रखें, बड़ी सी पार्टी करें, और या फिर इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर से कोई वजीफे वगैरह के लिए आए थे, बता दें, हमारे मसले हल हो जाए, इसलिए अल्लाह ने किताबें नाजिल की हैं, या फिर ये कि भाई जब दुल्हने रुख्सत होने लगे तो फिर भी तो उनके सर पे कुछ रखना है ना, वैसे तो दुल्हन बेचारी ने कभी कुरान नहीं पढ़ा, तो उसको उसके साये में तो जरूर भेजना है, तो अब उसका साया करके भेजें, तो इन चीजों के लिए अल्लाह ने किताब नाजिल की। ऐसा ही है, अल्लाह ताला क्या बताते हैं, किताब का नजूल क्यों होता है, अल्लाह ताला क्यों भेजते हैं, लाल लकुम तहतदून, ताकि तुम्हें हिदायत मिल जाए। हिदायत क्या होती है, हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, जब कोई रॉन्ग डूइंग कर रहा होता है तो फिर होता है कि अल्लाह इसको सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखाने के लिए आई है, हिदायत पा जाए, हम बेहिदायती हैं, हमें हम खुद नहीं रास्ता मिल सकता, हिदायत पाने के लिए किताबें आई, तो ये बड़ा अच्छा तरीका जो हम यूज करते हैं हिदायत पाने का, क्या इसी तरह हिदायत पाई जाती है, उनको भी हिदायत के लिए दी गई और हमें भी, कोई डिफरेंट बात नहीं कही गई, हुदल लिन नास, हुदल लिन मुत्तकीन, अभी आप पढ़ के आए हैं स्टार्ट में, तो हमें भी हिदायत के लिए ही दी गई, लेकिन उन्होंने भी इससे हिदायत ना ली। मैं आपको बताया था वो भी ऐसे पढ़ते थे कि उनको ना समझ आती थी, बस पढ़ते जाते थे, आज हमने भी वही तरीका इख्तियार कर लिया, क्या इसी तरह हिदायतें ली जाती हैं? और वल फुरकान, फुरकान दिया, और मुफसरीन कहते हैं फुरकान से भी मुराद किताब ही है, किताब जिसमें, यानी फुरकान, जो फुरकान क्या चीज होती है, जो फर्क करने वाली, डिफ्रेंशिएट करके बताती है कि ये हक है, ये बातिल है, ये बुराई है, ये भलाई है, ये सही है, ये गलत है, फर्क, फर्क से आप समझ लें, फुरकान फर्क से, फर्क करके दिखा देगी, ये सही सिराते मुस्तकीम है और ये गलत रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है, ये फर्क कौन बताएगा, किताब बताएगी। तो उन्होंने, उनको दी गई किताब और फुरकान, और हमें भी, आपको पता है हमारे तो कुरान में एक सूरत का नाम है सूरह फुरकान, हमें भी ये किताब फुरकान के लिए दी गई, लेकिन फिर हमें क्यों नहीं फर्क करना आया? हाँ, क्यों लोग आज तक कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आती, पता ही नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, समझ ही नहीं आती क्या करें, ये कंफ्यूजन कैसे हो गई फिर? जिनके हाथों में फुरकान है, जिनके घरों में, हर घर में, हर मुसलमान घराने में फुरकान है, वो कैसे इतने कंफ्यूज हैं कि उनको यही नहीं समझ आती कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है? जो उन लोगों को सही समझते हैं, जो खवारिज हैं, जो फसादी हैं, जो दुनिया में खून खराबा करते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, उनको क्या सोचते हैं ये सही है? हैं तो मुसलमान ना, बड़े नमाजी हैं वो, क्योंकि अगर तुम्हें ये, तुमने फुरकान समझा होता, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाया होता, इसको अपनी जिंदगी बनाया होता, तो तुम्हें समझ आती, हमें तो समझ ही नहीं आती, पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी जब मैंने किसी को कहते थे सुना, उसको मुझे समझ नहीं थी, लेकिन वो बात ना मेरे दिमाग में आज तक है, किसी ने मेरे सामने कहा फलां फलां जो है वो भाई मिजारों पे बहुत जाते हैं, वहां से मांगते हैं, और वो फलां है, वो कहते हैं ना करूं ऐसा, भाई समझ ही नहीं आती ये वो सही है या वो सही है, और वो जैसे एक बच्चे के जहन के अंदर एक बात बैठ जाती है कि क्या सही है फिर, अगर फुरकान है जिसके घर के अंदर, अगर उनको ही ये समझ नहीं है, तो बताएं और कौन से फरिश्ते उतरेंगे समझाने के लिए, हमें तो समझ नहीं आती कौन सा ग्रुप ठीक है, कौन सा नहीं है, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे आप इतनी कंफ्यूजन में रह सकते जबकि अल्लाह ने फुरकान उतार दी? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि फुरकान तो हर घर में है, मगर इस फुरकान को खोले कौन, इसको समझे कौन, इसको सीखे कौन, इसके ऊपर तदब्बुर कौन करे? कितनी दफा आता है कि इमाम शाफी ने किसी एक मसले के लिए 300 दफा कुरान पढ़ा, मतलब स्टार्ट से एंड तक किसी एक मसले के लिए, जब आप किसी कंफ्यूजन में और इस कुरान को समझेंगे, सीखेंगे, आपके सामने सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, मगर हम कंफ्यूजन में शायद रहना पसंद करते हैं, या फिर हमारे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं, रहना हमारे लिए कोई बात नहीं है। हालांकि आपको पता है कि जो ईमान कंफ्यूजन के साथ होगा, जिसमें शक होगा, वो तो ईमान काबिले कबूल ही नहीं। अगर यही नहीं समझ आएगा भाई किसको कहां जाके मांगना है और कहां से नहीं मांगना, यही अगर समझ नहीं आई और इसको लेके बैठे में और कंफ्यूजन में, वी आर ओके। मुझे पता है कि ये क्या एक्सेप्टेबल होगा अल्लाह के यहां, क्या कहा जाएगा कि आपके पास फुरकान था, ये तो ऐसे ही है कि कोई कहे हाँ मुझे पता चला मुझे कैंसर है लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तो बस ऐसे ही बैठी हूं। ये फौरन भागेंगे, उसका इलाज कराएंगे, दौड़ धूप करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, शक एक ऐसी बीमारी है, ये कंफ्यूजन ये ऐसी बीमारी है जो अंदर लग गई भी है और बैठे में कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं की बात नहीं है, ये आपके ईमान की बात है। जहां आपको कोई शक को शुभा आने लगे, कोई कंफ्यूजन आए, फौरन उसका इलाज कराएं। और उसका इलाज क्या है? फुरकान से होगा। ये बताएगा फर्क, ये बताएगा किसका रास्ता सही है किसका गलत है, ये रहनुमाई करेगा। लेकिन आओ तो सही इसकी तरफ, समझो तो सही, इसको पढ़ो और इसके साथ वक्त लगाओ। लेकिन जिस वक्त फुरकान को सीखने का मकसद भी वाह वाह बन जाए, फुरकान को सीखने का मकसद भी सिर्फ सर्टिफिकेट बन जाए, तो फिर क्या फर्क पता चलेगा? कोई फर्क तो बताने के लिए नहीं है, बस जल्दी जल्दी करो, टेस्ट पे टेस्ट दो ताकि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। उसके बाद नौकरी कहां पे मिलेगी हमें? क्या ये सर्टिफिकेट लेके नौकरी मिल जाएगी? अगर यही मकासिद है तो क्या क्या रास्ता नजर आएगा? तो ये तो हमारे लिए लाइट है, नूर है, जिसे हमें पता चलता है किस रास्ते पे जाना है, फर्क समझ आ जाता है। और जिनको आज तक नहीं समझ आया, जिन्होंने कोर्स कर लिए हैं ना पिछले, और अगर अभी तक वो ये कह रहे हैं, सबका ही रास्ता ठीक है, सारे ही ठीक है भाई, किसी को भी ना गलत को, सब ठीक है, आखिर सब खुदा को ही पाना चाहते हैं ना, तो फिर इसका मतलब उनको तो कुछ समझ ही नहीं आई, उनको तो फुरकान मिला ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं चला कि फर्क क्या है, उनको यही नहीं समझ आई कि दोनों इन रास्तों में क्या क्या, कौन सा भलाई का है, कौन सा बुराई का है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। और हम इसको बड़ी अपनी आजी समझते हैं कि सब ठीक है भाई। भाई नहीं, लड़ाई ना करो किसी को ना गलत कहो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तमाम अंबिया की दावत तो आपने लेके तो एक तरफ डाल दी कि वो तो नऊजुबिल्ला कोई बेकार थी, वो उनको भी ना किसी को नहीं कुछ कहना चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था। ये फुरकान फर्क बताता है, खुदा के लिए खुद तो आंखें खोलने के लिए इसको इस्तेमाल करो। अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है, लअल्लकुम तहतदून, तो इसी मकसद के लिए अल्लाह ने भी उनको उनको भी दी थी किताब। और फिर वह इस काला मूसा ली कौमी या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिखाज़िकुम अल-अजला। ए जब मूसा अलैहि सलाम ने कौम से कहा, वो मूसा अलैहि सलाम तो आए तो कौम का ये हाल देखा जब उन्होंने कि ये तो बछड़े की पूजा करने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा या कौम, ए मेरी कौम। अब देखें ये किसको कह रहे हैं, जिन्होंने शिर्क जैसा क्राइम कर दिया है, कोई छोटी बात नहीं की थी, उनको कह रहे हैं या कौमी, ए मेरी कौम। और आप देखेंगे आगे भी जितने पैगंबरों की बातें आप इंशाअल्लाह ताला आगे भी पढ़ते रहेंगे, वो सारे कहते हैं या कौमी या कौमी। और उनकी कौम कौन होती है? काफिर हैं, मुशरिक हैं, और यहां पे कबीरा गुनाह करने वाले हैं। अब मुझे बताएं हम जिन कौमों से हैं, वो अगर काफिर कौम है, हम कभी कहेंगे या कौमी? हम तो कहेंगे नहीं काफिर हैं काफिर। अब हमारे बच्चे मसलन, हम जिन मुल्कों में रह रहे हैं, हमारे बच्चे वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े, उनकी कौम कौन है? अब उनकी कौम वो तो नहीं है जो जो जिनको हम उनके माँ बाप भी पीछे छोड़ के आ गए, उनकी कौम तो वही है ना जिनमें वो रह रहे हैं। फिर क्या अपने बच्चों को कभी कहने देंगे कि वो कहीं या कौम मेरी कौम? तो आप तो परेशान होकर बेहोश हो जाएंगे कि हाय इन्होंने तो इनको कह दिया या कौम, ये तो इनके बन गए बस। अरे नहीं, जब तक उनके साथ खैर ख्वाही नहीं होगी कि ये मेरी कौम है, ये मेरे लोग हैं, इनको मैंने पैगाम देना है, किस तरफ ये जा रहे हैं, जब तक ये खैर ख्वाही नहीं होगी क्या पैगाम देंगे? हम तो कहते बस सिक्लूड होके रह जाओ, हम सिक्लूजन में रहेंगे, तो ये नहीं आपको कहा जा रहा कि उनके साथ बेस्ट फ्रेंड बन जाए, लेकिन ये भी नहीं कि आप सिक्लूजन में चले जाएं कि हाँ ये तो काफिर है, ये तो हमारे बिल्कुल हमारा इनके साथ नहीं कोई ताल्लुक, बस अपने आप को बस अलग करके, ये नहीं है। हर पैगंबर ने कहा या कौमी, तो क्या वो उनके साथ मिल गए? वो तो उनकी कौम है ही ना। लेकिन ये बताती है चीज कि वो उनको उनके साथ खैरख्वाही रखते थे, है मेरी कौम। ये नहीं कहा गया अब दूर हो जा मेरे सामने से, तुमको मैं अपनी कौम कहूं, तुमने मेरा क्या, मेरी टीचिंग्स का क्या किया, मेरी तालीमात को भूल के और बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या कौमी, तो वो कहते हैं कि तुम लोग तो काफिर और मुशरिक हो, चले जाओ तुम लोग यहां से, मैं तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं कैसे ये कहूंगी ये मेरी कौम। नहीं, मेरे लोग। ये दर्द जब तक नहीं उठेगा ना कि ये मेरे लोग हैं, तब तक नहीं हम दावत का काम कर सकते कि हम इनको दावत दें। हम तो उनसे दूर भागते हैं कि वो अछूत है, तो फिर कैसे दावत देंगे, किसको देंगे दावत? तो उन्होंने कहा या कौमी है मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम, तुमने अपनी जानों पे जुल्म किया है। कैसे जानों पे उन्होंने कैसे जुल्म कर दिया? तुमने अपने इसलिए कि शिर्क किया ना, जब इंसान कोई गुनाह करता है ना तो वो अपनी जान पे ही जुल्म करता है, किसी और के साथ नहीं है। तो आपके बाप आदम अलैहि सलाम ने क्या कहा था, रब्बना ज़लमना अन्फुसाना, ना हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, क्योंकि गुनाह करने से अल्लाह को कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम क्या कर रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अगर हम यहाँ पे यतीम का माल खा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने पेट में अंगारे भर रहे हैं, क्योंकि ये सजा है वहां पे, ये सजा है ना। तो किसके साथ जुल्म किया, हम तो अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, वो यतीम के साथ क्या जुल्म, वो तो जो उसके साथ वो है उसकी तो कंपनसेशन हो जाएगी। हमने अपने आप के पास, हम वो जो खा रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, ये निवाले हैं, ये पैसे हैं, मगर वो क्या है, वो आग के गोले हैं, अपने साथ ही जुल्म किया ना। हम जो भी गुनाह करते हैं वो हम अपने साथ जुल्म करें, क्योंकि हम अपने लिए आग वहां पे तैयार कर रहे होते हैं, और आग जल गई, और आग तेज हो गई, और सजा हो गई, और एक टॉर्चर अपने लिए रख लिया, तो सजाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो अपने साथ जुल्म है। तो तुमने जुल्म कर लिया अपने साथ, बित्तिखादिकुमुल अजला, बछड़े को बना के, बनाने से, उन्होंने भी ये नहीं कहा इला बनाने से, बछड़े को बनाने की वजह से तुमने अपने पर जुल्म कर लिया। क्या बनाने की वजह से, ये नहीं बोलना, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि उसके लिए ये बात भी कही जाए। फतूबू इला बारीकुम, अब जब गुनाह हो जाए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये नहीं कि अब तो हमारा गुनाह तो कभी माफी नहीं हो सकता, बस छोड़ो अब, हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया बस, नहीं। तूबू, गुनाह जितना भी बड़ा हो तौबा करो, तौबा करो। किधर, इलाल्लाह भी कह सकते थे, इला रब्बिकुम भी कह सकते थे, फरमाया इला बारी इकुम, अपने बारी की तरफ तौबा करो। क्यों बारी क्यों कहा, ये तुम्हारा पैदा करने वाला वो है, और तुम किसकी पूजा कर रहे हो, जिसको तुमने अपने हाथों से पैदा किया, जो तुम्हारा पैदा करने वाला है वो डिजर्व करता है कि तुम उसकी इबादत करो, और तुम इनकी इबादत शुरू कर रहे हो। अब क्या अल्लाह ताला की तरफ से क्या आया कि अब इनकी तौबा कबूल तब होगी जब एक दूसरे को कत्ल करेंगे। तो फरमाया फकतलू अनफुसकुम, तो कत्ल करो अपने नफ्सों को। तो अब इनको कह दिया गया, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए, इनको कह दिया गया कि अब आपस में एक दूसरे को कत्ल करना है। एक रिवायत में आता है कि जिन्होंने नहीं पूजा की थी वो खड़े हो गए, और दूसरी तरफ वो खड़े हो गए जिन्होंने पूजा की थी और वो उनको मारे थे। लेकिन दूसरी रिवायत में ये भी आता है कि खुल्लम खुल्ला मारना है, और अंधेरा छा गया और कत्लेआमों का, अब कौन किसको मार रहा है, बाप बेटे को, बेटा बाप को, भाई भाई को, यानी एक खून खराबा था। ऐसे में वो जो उनकी औरतें थीं और ये सब रोने लगे, और हजारों लोग कत्ल हो रहे हैं, मूसा अलैहि सलाम एक तरफ बैठे रो रहे हैं, ये नहीं कि मूसा अलैहि सलाम को खड़े पे खुश हो रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि तुमने ये किया था, तुम्हारी यही सजा होनी चाहिए थी, नहीं, रो रहे हैं या अल्लाह ताला अल्लाह। उनके पास वो कौम के भी लोग आ रहे हैं कि या मूसा आप दुआ करें, या मूसा इस तरह तो हमारे सारे ये खत्म हो जाएंगे, मूसा अलैहि सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी तो कौम खत्म हो जाएगी, ये बनी इसराइल खत्म हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह ताला तू माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे, यानी वो भी रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से माफिया मांग रहे। तो उस वक्त फिर जब अंधेरा हट गया तो फिर इनको रोक दिया गया, और बाज जगह पे आता है कि 70,000 लोग कत्ल हो चुके थे। और ये आसान बात नहीं थी, ये आसान बात नहीं थी कि अपनों को अपने हाथों से कत्ल करना, अपनों को। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन दबारिकुम। अब इंसान सोचता है ना कि आए ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक। यानी तुम सोचते हो ना, तुम क्या देख रहे हो कि हाय वो कत्ल हो गए, और हाय वो बहन भाइयों ने आपस में, यानी बाप बेटे ने आपस में, चचा भतीजे ने आपस में, इन्होंने आपस में एक दूसरे को कत्ल किया, हाय कैसे किया होगा कैसे। और वो औरतें बच्चे रो रहे हैं, और वो दौड़ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कह रहे हैं आप दुआ करें, मूसा अलैहिस्सलाम दुआएं कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कितनी बुरी बात हो गई। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें खैर है। खैर कैसे हो गई इसके अंदर? इसलिए कि हम देखते हैं इस दुनिया की ग्लासेस से हर चीज, इस दुनिया की ऐनक से हर चीज देखते हैं, जबकि अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि उनकी जो माफी हो गई दुनिया में, अगर किसी इंसान को सजा मिल जाए ना, वो बेहतर है, उसकी माफी हो जाए वो बेहतर है आखरत की सजा से। क्योंकि आखरत की सजाएं हम नहीं सह सकते, कि अगर किसी को आखिरत का यकीन होगा फिर ही वो ये सोचेगा ना कि यहां पे अगर सजा मिल के माफी हो गई है तो इसके अंदर कितनी बड़ी बेहतरी है। हम क्या सोचते हैं, हाय दुनियावी तौर पे हम देखते हैं, हाय ये तो बड़ा बुरा हुआ, सोचते ही नहीं कि आखिरत के तनाजुर में तो देखो आखिरत के लिहाज से ये कितना अच्छा हो गया कि यहीं पे वो क्लियर हो गए। क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया कि ए मूसा गम ना करो, जो जो लोग कत्ल हुए वो हमारे यहाँ शहीदों का दर्जा रखते हैं, वो वहां जिंदा हैं और रिस्क पा रहे हैं, और जो लोग जिंदा रहे इनकी तौबा हो गई, तो अब सारे क्लीन हो गए। तो दुनिया की सजा आखरत की सजा से बहुत हल्की है, कितनी भी बड़ी सजा हो, आखरत की सजा तो छोटी से छोटी भी क्या है, एक जहन्नमी के पैरों के अंदर के जो जूता है उसके तस्मे आग के होंगे, और उन तस्मों से बाकी कहीं उसकी बॉडी आग में नहीं, मगर उससे उसका दिमाग बॉयल हो रहा होगा, बॉयल जैसे हंडिया बॉयल होती है। आखरत की सजाएं बहुत सख्त है, यहां की सजाओं पे तरस आता है, हाय किसी का हाथ काट दिया, ओ चोर का हाथ काटना तो अल्लाह ताला माफ करे, जालिमाना सजा ये तो नहीं होनी चाहिए। ये जो वहां पे उसकी सजा होगी वो सोच सकते हैं कैसी होगी, यहां पे मुजरिमों पे तरस आता है, लेकिन अगर यहां पे किसी को सजा मिल जाती है और वो तौबा कर लेता है तो उसका गुनाह मिट जाता है, माफ हो जाता है, फिर आखरत में उसको सजा नहीं मिलेगी। ज़ालिकुम खैरुन लकुम इंदा बारीकुम, ये बेहतर है। अगर इंसान सोचे ना इस बात को, हम आखरत का तो सोचते ही नहीं ना, हम सारी चीजें यहीं का सोच रहे थे इसलिए हमें बुरा लगता है। सोचो अगर आखिरत के तनाजुर में तो ये कितना बेहतर है तुम्हारे रब के नजदीक। फताब अलैकुम, फिर वो मेहरबान हुआ तुम पर, यानी उसने माफ कर दिया, वो मेहरबान हो गया। सजा तो ये, यानी दुनिया की हद तो लगी, दुनिया में तो एक, क्योंकि मुर्तद की एक सजा है, बाज गुनाह आपको पता है ना वो कफारे के बगैर माफ नहीं होते, उनमें कफारा देना पड़ता है। अब जैसे कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, या तो दियत देगा या फिर किसास के लिए आए। तो इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने, बार बार तौबा कबूल करता है और बहुत रहम करने वाला, कि उसने फिर ये उठा दिया कानून, इसके बाद फिर किसी के लिए नहीं ये किया कि उसके बाद किसी से ऐसा हो तो उसको ये सजा मिले।